గిరివరధారి యశోదానందన వ్రజ జనరంజనాయ
పరివ్రాజకాచార్య అష్టోత్తరశ్రీమద్ అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాద కీ గ్రంథరాజ శ్రీమద్ భాగవతం కీ గౌర ప్రేమానంది ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివోటీస్ ఆల్ 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 గ్లోరీస్ టు శ్రీ గురు అండ్ శ్రీ గౌర హరే కృష్ణ. ఆజ్ ఇస్ భాగవత్ కథాకే కథాయజ్ఞ కే పాంచవే దిన్ హమ్ ఆప్ సభీ కా స్వాగత్ కర్తే హైన్. శ్రీమద్ భాగవతం కథా కే పూర్వ హమ్ పరమ్ భగవాన్ కీ సంస్తుతి కర్తే హైన్. తో కృపయా కర్కే मेरे पीछे पीछे आप सभी बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो महावदन
कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरे कृष्ण इस परम पुण्यप्रद पुरुषोत्तम मास के श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में जितने भी भक्त सम्मिलित हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। ऐसा कहते हैं कि जब भी भागवत के ऊपर वर्णन होता है तो उसमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो होता है श्रोता जो सुनने वाले लोग होते हैं, दूसरा होता है वक्ता जो कहता है। तो ऐसा बताते हैं कि जितने श्रोतागण उत्कृष्ट भावना के साथ होते हैं, जितनी ज़्यादा उनकी सत्य को जानने की इच्छा होती है, जितना ज़्यादा उनके अंदर भगवत कथा को सुनने का उत्साह होता है, तब भगवान मूर्ख वक्ता को भी हृदय से कुछ बोलने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो आप सभी वैष्णवों से निवेदन है कि कृपया यदि आपको आज की भागवत कथा का सही रसपान करना है तो उसके सफलता का श्रेय आप सबका है। यदि आप सभी मुझे आशीर्वाद देंगे तो शायद भगवान की कृपा से कुछ कहने में समर्थ हो सकूंगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ इस आधुनिक संसार में श्रील प्रभुपाद परम पूज्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इनकी कृपा से प्रकट हुआ है। आप सभी को तो मालूम ही होगा कि श्रील प्रभुपाद ने 70 वर्ष की वृद्धावस्था में अपने गुरु की आज्ञा को पूर्ण करने का संकल्प लिया और बिना किसी की सहायता के अमेरिका नामक देश में उन्होंने एक मालवाहक जहाज में जा बैठकर प्रवास किया। किस चीज के लिए? उनके गुरुदेव का आदेश था कि आपको श्रीमद् भागवतम के ऊपर आधारित भागवत धर्म का प्रचार करना है पश्चिमी देशों में, क्योंकि श्रीमद् भागवतम की महिमा भारत में तो शायद अभी नहीं मालूम, लेकिन पहले लोगों को मालूम थी, और अभी धीरे धीरे आप सभी वैष्णव की कृपा से इस संसार के लोग भी इसकी महिमा को जान पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने इस महान ग्रंथ को संपूर्ण विश्व में प्रकाशित किया है। किसी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा था कि श्रील प्रभुपाद यदि संसार का सारा ज्ञान नष्ट हो जाए तो क्या आप बता सकते हैं कोई एक पुस्तक जो नष्ट नहीं होगी, जो हमारे पास होगी तो भी संसार का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद ने भक्ति विनोद ठाकुर के वचनों को याद करके बताया कि हाँ, ये संसार का जितनी भी लाइब्रेरियां हैं, जितने भी पुस्तकालय हैं, जितने भी ज्ञान के आजकल आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे है, इंटरनेट के ऊपर है, बहुत सारे सर्वर्स के ऊपर होगा, ये सारा ज्ञान यदि नष्ट भी हो जाए और एक पुस्तक कौन सी, श्रीमद् भागवतम, यदि श्रीमद् भागवतम इस संसार में रहेगी तो समझना चाहिए कि कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत यह समस्त ज्ञान का सार है। वही श्रीमद् भागवतम में शुरुआत के श्लोकों में बताया गया है। प्रथम स्कंद का पहला श्लोक वो इस वैदिक ज्ञान, जितना भी ज्ञान है उसे वैदिक ज्ञान कहते हैं, तो उसका जो बीज है उसकी व्याख्या करता है। जन्माद अस्य यतः, बताया गया है कि वो बीज, समस्त ज्ञान का बीज क्या है, वो समस्त ज्ञान का बीज है परम भगवान। उनके बारे में जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, उनकी व्याख्या करता है। उसका जो दूसरा श्लोक है उसमें बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम क्या है, निगम तरोर गलितम फलम। निगम यानी समस्त वैदिक शास्त्र, और उन वैदिक शास्त्रों को एक बड़े वृक्ष की उपमा दी गई है। निगम तरु, तरु मतलब वृक्ष, इस पेड़ के ऊपर एक बहुत ही पका हुआ फल लगा हुआ है, वो क्या है, वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। वो कैसा है ऐसा बताते हैं, जैसे अभी आजकल लोग आम खा रहे हैं, अभी आम शायद सस्ते हो गए हैं पानी गिरने के बाद, तो लोग पेटियों की पेटियां उठाकर लाते हैं और रस बनाकर उसका पान करते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि जो आम होता है उसको फलों का राजा बताया गया है, और ऐसा आम आज के जैसा नहीं कि जो कि बाहर पकता है, जो आम पेड़ के ऊपर पकता है वो सबसे मधुर और स्वादिष्ट होता है। और उसकी पहचान क्या है, शुक्र मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ऐसा बताते हैं कि शुक यानी तोता, तोता बोलते हैं उसको, उसको मराठी में क्या बोलते हैं, पोपट बोलते हैं। तो जब तोता जिस आम को अपनी चोंच लगा देता है वो जो फल होता है वो सबसे मीठा होता है। आप लोगों ने शायद खाया नहीं होगा, लेकिन जो जानकार लोग हैं वो ऐसे फल को ही खाते हैं। पिबत भागवतम रसम आलयम, वो फल सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं उनके मुख से निकला है। वो इसका जो श्रीमद् भागवत है, समस्त वैदिक वृक्ष का सबसे पका हुआ गला हुआ अमृतमय फल कैसा है, पिबत भागवतम रसम आलयम, ऐसा फल है। आपने जो आम खाया होगा कितना होता है, उसका रस कितना निकलता है, थोड़ा सा निकलता है, एक एक कटोरी दो कटोरी, उससे ज्यादा नहीं निकलता है। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम है, एक पुस्तक है, 12 स्कंद 18 हजार श्लोक, इसे बताया गया है रसम आलयम, रस का सागर है। और कौन इसका पान करता है, मुहुर अहो रसिका भुवि भावुकः। जिसको इसकी समझ है, जिसको इसका ज्ञान है, जिसको इस रस की प्राप्ति में रुचि है, ऐसे महान भक्त इस रस का पान करते हैं। और ऐसा बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जैसे जो महान वैष्णव हैं, जिन्होंने यह रस हमें दिया हुआ है, तो यदि उनके मुख से, उनकी कृपा से, उनकी लिखी हुई पुस्तकों के माध्यम से हम रस का पान करते हैं, तभी हम श्रीमद् भागवतम को सही प्रकार से समझ सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे सामने यह सुंदर रसमय शास्त्र प्रस्तुत किया है। कैसे प्रस्तुत किया है? सरल भाषा में उन्होंने श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक श्लोक के ऊपर शब्दशः अर्थ लिखा है, उसके ऊपर उसके अनुवाद, उसका तात्पर्य, ऐसा करके उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें दी हैं। शुरुआत के समय में ऐसा बताते हैं, जब श्रील प्रभुपाद पृथ्वी पर थे और श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का भाषांतर कर रहे थे, तो उनके जितने भी शिष्य थे वो उत्सुक रहते थे बहुत कि कब श्रीमद् भागवतम का नवीन भाषांतर होकर जो पुस्तक छपकर आएगी। और उस समय जो उनके टाइपिस्ट होते थे, जो ट्रांसलेटर होते थे, टाइपिस्ट होते थे, ट्रांसक्रिप्शन करने वाले होते थे, उनको ये मालूम होता था कि क्या आने वाला है, कि श्रील प्रभुपाद की कौन सी, भागवतम का कौन सा स्कंद, कौन सा खंड प्रकाशित होकर आने वाला होता है। तो ऐसे भक्तों से लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, कौन सा खंड आ रहा है, कौन सी कथा है, क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपको यदि कोई बहुत अच्छा रहस्य मालूम है तो क्या होता है, थोड़ा सा लगता है कि अरे मैं विशेष हूं, मैं बहुत विशेष हूं, मुझे विशेष चीज मालूम है। तो ऐसे भक्त लोग चर्चा किया करते थे, बहुत उत्साह रहता था, बहुत उत्सुकता रहती थी, और एक एक खंड आता था। और ऐसा बताते हैं कि बहुत सारे भक्त जिस दिन वो खंड आता था, छपकर आता था, उनके हाथ में मिलता था, वो उसको पढ़ने की कोशिश करते थे। तो ऐसी उत्सुकता आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने भक्ति में इतनी प्रगति कैसे कर ली? श्रील प्रभुपाद केवल 11 वर्ष तक इस पृथ्वी पर थे अपने शिष्यों के साथ जब उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया। उसके बाद 1965 में पहुंचे थे, 66 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और 1977 में उन्होंने महाप्रयाण करके भगवत धाम चले गए। 11 वर्ष के अंदर श्रील प्रभुपाद सभी भक्तों को लगातार संग नहीं दे पाए। कुछ कुछ भक्तों को कुछ कुछ संग मिला और उतने ही संग में उन्होंने इतनी प्रगति कर ली। अपना संपूर्ण जीवन श्रील प्रभुपाद की सेवा में न्योछावर कर दिया, समर्पण कर दिया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा एक गुण से होता है, जो श्रोता का गुण होता है, वो क्या होता है? शृणुवतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। ऐसा बताते हैं जो इसको श्रद्धा पूर्वक सुनता है, इस ज्ञान को, श्रद्धा मतलब ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद भगवान कृष्ण के साकार सच्चिदानंद स्वरूप के अलग अलग भाग हैं। दशम स्कंद उनका मुख है, प्रथम और द्वितीय स्कंद उनके चरण कमल है, उससे शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से उसको ये श्रद्धा है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण यह समस्त ज्ञान का सार है, और उसको वो श्रद्धापूर्वक सुनता है। और गृणतश्च स्वचेष्टितम, और सुनने पर क्या होता है, हम बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन हमारी स्मृति बहुत कमजोर है। लेकिन यदि हम प्रयत्न करेंगे गृणतश्च स्वचेष्टितम, चेष्टापूर्वक उस ज्ञान को प्राप्त करने की, याद रखने की, उसको अपने जीवन में उतारने की, तो क्या होगा? कालेन न अतिदीर्घेण, थोड़े समय में, न अति दीर्घ मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा, भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में निवास करते हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान निवास करते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ऐसा है कि ऐसे भक्त की हृदय की शंकाएं समाप्त हो जाती हैं, उसका भक्ति में मन स्थिर हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि जीवन का केवल एकमात्र ध्येय है, वो है परम भगवान की भक्ति, उनकी सेवा। तो ये श्रीमद् भागवतम के श्रवण का फल है कि हम भगवान की सेवा में लगें। तो आज की जो कथा है वो है षष्ठम स्कंद के ऊपर आधारित है, छठवां स्कंद। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मन्वंतरश्च ईशान कथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। ये 10 विषय हैं। ये क्या है विषय? सर्ग यानी ब्रह्मा जी के उत्पत्ति के पूर्व जितने भी सृष्टि के अलग अलग घटक हैं उनका निर्माण होता है, उन निर्माणों को सर्ग कहते हैं। और जब करुण दक्षाय विष्णु के नाभि कमल से उद्भूत होकर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, कमलासन बोला गया है उनका नाम, भी कमल है उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठते हैं और उसके बाद भगवान की प्रेरणा से वो तपस्या में लगकर भगवान से सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके बाद विसर्ग वो सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी से जो सृष्टि आरंभ होती है उसे विसर्ग कहा गया है। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के द्वारा गई सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। स्थानम तीसरा विषय है, स्थानम मतलब अलग अलग लोगों की स्थिति कैसी है, कैसे भगवान की शक्ति आधार शक्ति इन लोगों को स्थापित किए हुए हैं। पोषणम जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिनके हृदय में श्रद्धा है उनको भगवान उनकी श्रद्धा के अनुसार किस प्रकार से पोषण यानी भक्ति का उत्साह प्रदान करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, वो बताया गया है। ऊतयः किसी भी कार्य को करने के लिए एक इच्छा चाहिए, एक महत्वाकांक्षा चाहिए, वो कैसे प्राप्त होती है, कैसे व्यक्ति अलग अलग कार्यों में लग जाता है। ऊतयः उसके बाद है मन्वंतर। मन्वंतर का अर्थ है कि 14 मनु बताए गए हैं जो प्रकट होते हैं और हर मनु के समय जो मनु होते हैं वो जीवात्माओं को किस प्रकार से अपने जीवन में चलना चाहिए उसका उपदेश देते हैं। जैसे छठवां स्कंध है, इसका नाम है मानव के लिए विहित कर्म, मनुष्य को किस प्रकार से अपने जीवन में कर्म करने चाहिए। तो मन्वंतर यानी किस प्रकार से मनुष्य जाति अपने जीवन में कर्म करे, वो कौन से कर्म होने चाहिए, उसका वर्णन। फिर उसके बाद का विषय है ईशानु ईश कथा, परम भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतारों की कथाएं। निरोध किस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड धीरे धीरे निरोध यानी प्रलय की अवस्था को प्राप्त करके वापस खींच लिया जाता है, वो विषय। फिर नौवां विषय है मुक्ति, किस प्रकार से संसार के बद्ध जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और दसवां विषय है आश्रय यानी संपूर्ण जीवों के लिए परम आश्रय कौन है, किस प्रकार से उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए, इसका जो सारा ज्ञान है वो श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। तो श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं, कभी कभी कुछ वैष्णव ऐसी चर्चा करते हैं कि कौन से स्कंद में कौन सा विषय है, लेकिन वो बताते हैं कि ये दसों के दसों विषय अलग अलग स्कंदों में दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इस स्कंद में केवल यही विषय है, बल्कि जैसे जैसे वर्णन आता जाता है वैसे वैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अलग अलग विषयों का वर्णन कर रहे हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम का ये षष्ठम स्कंद है बहुत ही विशेष है। इसमें मुख्य विषय है मन्वंतर यानी मनुष्य के लिए मानव जाति के लिए विहित कर्म क्या है, इसका वर्णन है। लेकिन इसके साथ ही साथ साथ बहुत सारे सुंदर विषयों का भी वर्णन किया गया है। जैसा कि हर दिन की कथा में आपको मालूम है कि पूरे छठे स्कंद को या किसी भी एक स्कंद को ले पाना संभव नहीं है, तो केवल कुछ विशेष जो विषय हैं उसके ऊपर ही हम ध्यान दे सकते हैं। तो उसी प्रकार से आज जो हम विषय लेने वाले हैं वो तीन विषय हैं। कौन से तीन विषय हैं? पहला विषय है अजामिलोपाख्यान, अजामिल का उपाख्यान, अजामिल की कथा आप सभी ने सुनी होगी, उसका वर्णन। दूसरा है दक्ष द्वारा नारद मुनि को दिया गया शाप, क्यों दिया, नारद मुनि ने उसका किस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया। और तीसरा है वो है चित्रकेतु महाराज की कथा। तो इन तीन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सारे विषयों के ऊपर पूर्ण रूप से न्याय कर पाना संभव नहीं है, इस कारण जितना संभव उतना हम प्रयत्न करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पांचवें स्कंध में जिसकी चर्चा कल की गई थी, लेकिन कल वर्णन में बताया नहीं गया था, पांचवें स्कंध में मुख्यतः कुछ अध्यायों में नरक लोक का वर्णन बताया गया है, अलग अलग प्रकार के नरक लोक, और उस नरक लोक में किस प्रकार से यातना दी जाती है इसका भी वर्णन है। तो परीक्षित महाराज पंचम स्कंध को सुन रहे थे, उन्होंने नरक लोक का वर्णन सुना, भरत ऋषभ देव का वर्णन सुना, भरत महाराज की पूरी कथा सुनी, बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया, और उसके बाद उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आ गए, और उन प्रश्नों के ऊपर चिंतन करना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो विषय है भक्तों को समझने के लिए बहुत गहरा विषय है। जैसा कि हमने बताया, पहला विषय है अजामिल की कथा, दूसरा है दक्ष प्रजापति की, तीसरा है चित्रकेतु की। अभी इन तीनों कथाओं में एक विशेष बात है, अजामिल जो था, अजामिल के पापमय जीवन और उससे मुक्ति का वर्णन है। दक्ष प्रजापति जो हैं वो भगवान के महान भक्त हैं, फिर भी उन्होंने नारद मुनि जैसे वैष्णव को श्राप क्यों दे दिया, किस कारण से दे दिया, उसका वर्णन। और तीसरा विशेष रूप से इंद्रदेव ने चित्रकेतु जो कि वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुए थे उनका वध किया, तो इंद्र को ऐसा क्यों करना पड़ गया। ये तीनों विषयों में बहुत गहरा संबंध है, तीनों विषय जुड़े हुए हैं, और उसमें भक्तों को बहुत चिंतन करना चाहिए, और इस विषय को यदि आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी को भगवत भक्ति में स्थिर होने की शक्ति प्राप्त होगी। तो जो पहला विषय है वो है अजामिलोपाख्यान। इसमें परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं। जब उन्होंने सुना कि नरक लोक में अनेक अनेक जीव यातना भोगते हैं, तो करुणावश, एक वैष्णव जो होता है वो करुणावश होता है, वो दूसरों के कल्याण की बातों का विचार करता है, तो उनके मन में यह प्रश्न आ गया कि इन जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है। तो उन्होंने प्रश्न रखा सुखदेव गोस्वामी के सम्मुख, लेकिन उन्होंने यह चिंतन भी किया, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि मैंने सुन रखा हुआ है कि पाप कर्मों के लिए बहुत सारे प्रायश्चित बताए गए हैं, जब कोई व्यक्ति पाप कर्म में लग जाता है तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, विशेष रूप से वानप्रस्थ आश्रम यह क्यों बनाया गया है, कि जब व्यक्ति बच्चा होता है तो शिक्षा ग्रहण करता है, कि गृहस्थ आश्रम में चाहते और ना चाहते हुए व्यक्ति धन कमाने के लिए नाना प्रकार के पाप करता है, झूठ बोलना, फंसाना, नहीं चाहे तो भी हो जाता है, हमें ऐसी संस्था में काम करना पड़ता है जिसके सिद्धांत गलत होंगे तो वहां से धन की प्राप्ति हो रही होगी। और भी व्यक्ति जब अपने अपने समाज में अपने पद को पद को या स्तर को बना के रखना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करता है, बहुत सारी यंत्रणा, बहुत सारी योजना करता है, और इसमें न चाहते हुए भी उसके हाथ से बहुत सारे पाप होते रहते हैं। तो इस कारण बताया गया कि वानप्रस्थ आश्रम में विशेष रूप से व्यक्ति को सामाजिक कर्मों से विरक्त होकर भगवान की सेवा में लगना चाहिए, और जब तक वह गृहस्थ है तब भी उसे नाना प्रकार से भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, यदि किसी से पाप हो जाते हैं, बहुत सारे पाप होते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे भयंकर पापों का वर्णन किया गया है, जिसमें दूसरे को मारना, दूसरे का धन चुराना, गोहत्या, ब्राह्मण के पत्नी के साथ कुकर्म, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पापों का वर्णन किया गया है। तो वैदिक शास्त्रों में एक विधान है जिसे कहते हैं प्रायश्चित्त। उस प्रायश्चित्त में व्यक्ति उन सभी पापों से अपने आप को मुक्त करने के लिए कोई व्रत करता है, कोई तपस्या करता है, या ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा। तो ये अलग अलग प्रकार बताए गए हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। लेकिन परीक्षित महाराज को इससे संतोष नहीं है। उन्होंने यह प्रश्न रखा, क्वचित निवर्तते अभद्रात, क्वचित चरति तत्पुनः, प्रायश्चित मतोपार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। वो कहते हैं कि ये जो वेदों में विधान है प्रायश्चित का, पाप कर्मों से मुक्ति का, इसमें मुझे समाधान नहीं हो रहा है। क्यों? जब व्यक्ति पाप कर्मों में लगता है तो प्रायश्चित करता है, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद फिर से उस पाप कर्म के पीछे जाता है। प्रायश्चित मतोपार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। वो उदाहरण देते हैं कि हाथी का स्नान। आप सभी ने हाथी को देखा होगा। हाथी क्या करता है, एक सुंदर स्वच्छ सरोवर में प्रवेश करता है और पानी उड़ा उड़ा कर मस्त स्नान करता है। भगवान ने एक हाथी को स्नान करने के लिए विशेष सूंड दी हुई है जिसमें पानी भर के फव्वारे के ऐसे छोड़ सकता है। आप सभी को शावर बात अच्छा लगता होगा शायद, है ना? तो भगवान ने उसको नेचुरल शावर बात करने का, तो पानी भरता है हाथी, ऊपर छोड़ता है। अभी रेन डांस करने के लिए कोई जाते हैं कुछ लोग, मजा आती है उनको पानी में नहाना करना। तो भगवान ने बोला हाथी को, जब चाहो तुम शावर बात ले सकते हो, पानी उड़ाओ मस्त। लेकिन क्या होता है, इतना सुंदर स्वच्छ स्नान करने के बाद वो हाथी बाहर आता है और कीचड़ में लोटता पोटता है, अपने आप को फिर से शरीर को उस कीचड़ से, गंदगी मिट्टी से ढक लेता है। तो वैसे ही है, हम पाप कर्म करते हैं, अपने आप को दूषित कर देते हैं, और उसके बाद फिर कुछ व्रत आचरण, दान पुण्य ये सब करते हैं, वो हो गया तो हमको लगता बहुत अच्छा, गंगा स्नान है। गंगा स्नान, गंगा स्नान करने के लिए लोग अपने पापों से धोने के लिए जाते हैं, तो लोग बहुत गंगा स्नान गए तो गंगा से बाहर आके उनको लगता है कि चलो अभी मैं परम शुद्ध हो गया, और फिर से वापस आने के बाद वही जो खेल है, जो योजना है, वो पाप प्रवृत्ति गई नहीं है। पाप कर्मों से तुम प्रायश्चित तो हो गया, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति जो हृदय के अंदर बैठी हुई है उससे कैसे मुक्त होंगे, ये प्रश्न उन्होंने पूछा परीक्षित महाराज ने। ये प्रायश्चित जो है तो हाथी के स्नान के समान है, आप मुझे कोई ऐसी विधि बताइए जिस विधि को जानने के बाद व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है और फिर से वो पाप करने के पीछे नहीं जाएगा। एक और उदाहरण दिया जाता है, जैसे रोग होता है, इस अस्पताल में लोग रोग के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, लेकिन यदि रोग व्यक्ति के अंदर है, यहां के ट्रीटमेंट लिया, वो रोग जड़ से नहीं गया, तो फिर से बाहर जाने के बाद कुछ खाया पिया, कुछ गड़बड़ किया, तो फिर से वो रोग बाहर प्रकट हो जाता है। तो जब तक जड़ से रोग का निदान नहीं हो जाता, तब तक उसकी बार बार वापस आने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे पाप करने की प्रवृत्ति है, जब तक जड़ से उसका हम निवारण नहीं करेंगे, तब तक जीव का मन, जीव का चित्त पाप करने के पीछे भागता रहता है। वो पाप कैसे करता है? तीन प्रकार से करता है, मन, वचन और कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन प्रकार से पाप करता है। ऐसा बताते हैं कि सतयुग में यदि कोई मन से पाप करता था तो उसका उसको दंड भोगना पड़ता था। जैसे राजा नहुष, उनका भी वर्णन आया हुआ है। राजा नहुष की कथा ऐसी आती है कि एक बार इसी कथा में वर्णन है, स्कंद में, इंद्र को वृतासुर की हत्या के कारण ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, तो एक साल तक मान सरोवर में जाकर तपस्या करने के लिए बैठ गए। तो उस समय नहुष ने, राजा नहुष ने संपूर्ण देवताओं का जो कार्यभार था राजा के रूप में संभाला, तो उस समय उनका मन इंद्र की पत्नी इंद्राणी उनके ऊपर आ गया, मन में विचार आ गया, वो केवल उस विचार मात्र से उनको सर्प की योनि को स्वीकार करना पड़ा, केवल विचार लाने मात्र से। तो मन, तो सतयुग में बताते हैं कि मन से किए गए पाप का फल भी भोगना पड़ता था। तो यदि वो नियम इस कलयुग में लागू कर दिया जाए तो पता नहीं, मैं तो आपके बारे में नहीं कह सकता हूं, अपने बारे में जरूर कह सकता हूं कि वो जो पंचम स्कंद में जितने भी नरकों का वर्णन किया गया है वो सामने प्रकट हो जाएंगे निस्संदेह। तो व्यक्ति मन से भी पाप करता है, वचन, वचनों से भी पाप हो जाते हैं, निंदा हो जाती है, किसी के बारे में कुछ गलत कह दिया जाता है, इस प्रकार वचन से भी व्यक्ति बहुत सारे पाप कर्म करता रहता है। और कर्म, कर्म से तो करता ही है, सभी को मालूम है कर्म से होने वाले पाप कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार से व्यक्ति पाप करता है। तो इसकी जो प्रवृत्ति हो है, उसका निदान क्या है, उसका उपाय क्या है, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। वो बताते हैं कि नाना प्रकार के साधन हैं प्रायश्चित के, लेकिन एक साधन ऐसा है जिससे, जिसको स्वीकार करने से व्यक्ति के हृदय का, चित्त का शुद्धिकरण हो जाता है। वो क्या है? केचिद् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवन्ति कासनेन निहारम इव भास्कर। बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी। वो बताते हैं कि एक भक्ति, भक्ति की विधि क्या है समझना आवश्यक है, उसका भी वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से आगे किया गया है। साधारणतः कहा जाए भक्ति मतलब नवधा भक्ति, भक्ति के नौ अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ अलग अलग अंग बताए गए हैं जो भी भगवान को इन नौ विधियों के माध्यम से पूजता है, उनकी संस्तुति करता है, वो भक्त कहलाता है। जिसने भी भगवान को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है वो भक्त है। क्यों? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जो अपने आप को भगवान का दास स्वीकार कर लेता है वो भक्त है। एक बार कोई कह देगा, जैसे भगवान श्री राम का वचन है, सकृद एव प्रपन्नोस्मी तव अस्मि इति याचते, अभयम् ददामि सर्वदा, भगवान श्री राम कहते हैं कि यदि कोई एक बार भी, एक बार, केवल एक बार भगवान के सम्मुख आकर यह कहता है हे भगवान मैं आपका हूं, तव अस्मि इति याचते, याचते मतलब हाथ जोड़कर कातर स्वर से सच्ची भावना से यदि कोई भगवान के सामने जाके कहता है कि हे भगवान मैं आपका हूं, कृपया मुझे दास रूप में स्वीकार करें, तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण नारायण वही हैं, अभयम ददामि सर्वदा, मैं ऐसे व्यक्ति को हमेशा अभय प्रदान करता हूं, उसको अपने संरक्षण में रखता हूं, भगवान कहते हैं। यह मेरा इति एतत् वचनम मम, यह मेरा वचन है, तो भगवान ने वचन दिया हुआ है, तो जो भी भक्त है, जो भी भगवान का दास है, उसको निश्चिंत रहना चाहिए। और आज यदि हम अजामली कथा को सुन लेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी को वह श्रद्धा और वह विश्वास प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने देखा होगा ना, कोई चीज खरीदते हैं तो उसके बाजू में एक स्टार लगा होता है, कंडीशंस अप्लाई, तो कंडीशन क्या है, यदि मैं भूल जाऊंगा तो कोई मुझे याद दिला देना कंडीशन बताने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति की विधि है केचित केवलया भक्त्या, एकमात्र कोई भक्ति की विधि का पालन करता है, सारे व्रत उपवास तप पुण्य पूजा पाठ तीर्थ स्थानों का भ्रमण मंत्रोच्चार दान दक्षिणा ये सब का त्याग करके, ये सब आप करिए, आपकी क्षमता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई केवल भक्ति केचित केवला केवलया भक्त्या, केवल भक्ति का अभ्यास करता है तो क्या है, वासुदेव परायण भगवान की शरणागत होकर, अघम धुनवंति कास्नेन निहारम एव भास्कर, वो उदाहरण देते हैं जैसे आपने आपने ठंडी के समय कोहरा देखा होगा, सुबह के समय कोहरा होता है, ठंडी के समय उसे फॉग बोलते हैं इंग्लिश में, तो सुबह के समय सूर्य की शक्ति कम होती है, लेकिन जैसे सूर्य की शक्ति बढ़ते जाती क्या होता है, वो कोहरा नष्ट होते जाता है, तो धीरे धीरे पूरा चारों तरफ का वातावरण स्पष्ट हो जाता है, हम देख सकते हैं, नहीं तो पहले कोहरे में एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो जाता है, दूर की वस्तु को देखना कठिन होता है, लेकिन जो सूर्य की शक्ति है वो धीरे धीरे कोहरे को नष्ट कर देती है, और कोई कारण नहीं चाहिए कोहरे को नष्ट करने के लिए, सूर्य का उगना पर्याप्त है, सूर्य उगेगा अपने आप कोहरा नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है, भगवान की भक्ति का अभ्यास करता है, तो अघ यानी पापों का जो कोहरा उसके चेतना में बैठा हुआ है वो भक्ति के अभ्यास से धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, कोई और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, तो यह सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। और वो उदाहरण देते हैं कि बाकी दूसरे जो साधन हैं वो कैसे हैं, वो कहते हैं प्रायश्चित्तानि चिरणानि नारायण परांगुखम न निपुष्णन्ति नराजेन्द्र सुरा कुंभम इवापगः, बहुत ही सुंदर उपमा देते हैं कि बाकी जो साधन हैं वो शराब के, जिस मिट्टी के बर्तन में शराब को लेकर कोई सेवन करता है तो शराब का जो शराब रखा हुआ मिट्टी का बर्तन होता है, तो उस मिट्टी के बर्तन को अलग अलग तीर्थों में जाके हम स्नान कराएंगे, लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तीर्थों में स्नान कराते हैं, तो उस घड़े उस शराब के जो पात्र को लेकर जाइए, गंगा स्नान यमुना स्नान नैमिषारण्य और भी जो भी अलग अलग तीर्थ हैं सब जगह जाकर स्नान कराइए, क्या होने वाला है, क्या वो शुद्ध होने वाला है। सुरा कुंभम इव आपगा, यह उदाहरण दिया गया है, तो जब तक मनुष्य के हृदय में पाप प्रवृत्ति है, कितने भी स्नान कर लो, कितनी भी यात्रा कर लो, कितना भी व्रत अनुष्ठान कर लो, जब तक अंतर मन शुद्ध नहीं है तब तक बाहर की शुद्धता से क्या फायदा। यह जो प्रायश्चित्त की विधि है इसे बताया गया मेकअप, मेकअप करते हैं लोग, मालूम है ना आपको, मेकअप बाहर से मेकअप कोई बूढ़ा आदमी भी रहेगा तो क्या करता है, मेकअप कर लिया तो अच्छा दिखता है, देखा है ना आपने। और फिर युवा लोगों का क्या कहना, तो मेकअप करने से व्यक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है वो नहीं बदलता है। तो ये जो अलग अलग जो पराश्चित्य के विधान हैं उसको मेकअप के समान बताया गया। लेकिन जो भगवान की भक्ति है उसे एक ऐसा साधन, केवल साधन बताया गया है। और भगवान की भक्ति किससे होती है शुरू, भगवान के नाम रूप गुण और लीला इसके आस्वादन से शुरू होती है। भगवान का नाम उसकी शुरुआत है। इस कलयुग में बताया गया है, क्या बताया गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव हि केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में बताया गया है, तीन बार बताया गया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, भगवान का नाम। और उसके बाद ही केवलम, निश्चित रूप से एकमात्र। इस कलयुग में न अस्ति नहीं है, न अस्ति नहीं है, न अस्ति नहीं है, गति मतलब पापों से मुक्त होने का मार्ग, अन्यथा यदि कोई भगवान का नाम नहीं लेता है तो वो किसी भी प्रकार से पापों से मुक्त नहीं हो सकता है, उसके लिए असंभव है। इस कलयुग में असंभव है, किसी और युग में शायद ध्यान से बहुत कठोर तपस्या से हो सकता था, लेकिन इस कलयुग में और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इसके लिए वो बताते हैं कि हे परीक्षित महाराज, मैं तुमको इसे समझाने के लिए अजामिल की कथा बताऊंगा। अजामिल की कथा को शुकदेव गोस्वामी ने अगस्त्य मुनि से सुना था, और ये जो अजामिल उपाख्यान है ये बहुत ही सुंदर उपाख्यान है। आप सभी को थोड़े में बताऊंगा कि ये उपाख्यान क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अजामिल की कथा, काम्यकुब्ज में अजामिल एक ब्राह्मण था, उसके पिता बहुत ही विद्वान थे, अपने पिता की सेवा में था। पिता की सेवा में वो रोज उनकी सेवा के लिए जंगल में जाकर लकड़ियां उठाकर लेके आता था, फूल लेके आता था, पूजा की सामग्री लेके आता था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी, धर्मपरायण था, भगवान विष्णु का भक्त था। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब वो जंगल में गया तो जंगल में उसने एक विचित्र दृश्य देखा। वहां पर उसने देखा कि एक शूद्र शराब पीकर मत्त है और वो एक वैश्य का आलिंगन कर रहा है, और उस वैश्य के नेत्र भी शराब के नशे में गोल गोल घूम रहे थे और दोनों विचित्र हरकतें कर रहे थे। अजामिल ने जब उस दृश्य को देखा तो उसने स्मरण किया अपने पिता की दी हुई शिक्षाओं का, वैदिक शिक्षाओं का। बहुत प्रयत्न किया, मुझे यह दृश्य नहीं देखना है। लेकिन ऐसा बताते हैं, जब पाप प्रवृत्ति चित्त के अंदर होती है और हृदय निर्मल नहीं होता है तो व्यक्ति का मन खिंच जाता है। उसने बहुत प्रयत्न किया, आंखें बंद की, नहीं देखना, लेकिन फिर भी बीच बीच में हल्के हल्के से आंखें खोल के देखता था, देख रहा था, बहुत प्रयत्न कर रहा था नहीं देखना, लेकिन फिर धीरे देखते 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 फिर उस दृश्य में वो मग्न हो गया। और जो वैश्या स्त्री थी उसको देखने में वो इतना डूब गया, जब वो वापस आया उस दृश्य को देखने के बाद उसी के चिंतन में डूब गया। इस कारण बताया गया है कि कैसे शुरुआत होती है, इसकी चिंतन की शुरुआत ध्यान से, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते। बार बार उस विषय का चिंतन करने से उसके प्रति संग निर्माण हो जाता है। अजामिल के साथ वैसा ही हुआ। उस दृश्य को देखकर उसके हृदय पर इतना प्रभाव हुआ कि घर में उसने धीरे से उस वैश्या को नौकरानी बना के ला रख लिया, उसको फुसला के ले आया, नौकरानी बना के रख लिया, और जब नौकरानी बना के घर में रख लिया, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो उसके कुचक्र में फंसता गया। फिर उसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी सुंदर पत्नी का त्याग कर दिया और उस स्त्री के मोह में इतना आसक्त हो गया कि उसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति का पूर्ण रूप से विस्मरण कर दिया, भगवान की भक्ति का त्याग कर दिया। और ऐसा बताते हैं कि जिस प्रकार का हम अन्न खाते हैं वैसी हमारी बुद्धि हो जाती है। तो उस निम्न स्त्री का बनाया हुए हाथ का अन्न खाने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती गई और वो नाना प्रकार के अलग अलग पाप कर्मों में लग गया। चोरी, जुआ, लूटना, दूसरों को मारना, झूठ बोलना, फंसाना, इस प्रकार से वो नाना प्रकार के कुकर्मों में फंसता गया। और इस प्रकार से उसने उस स्त्री के माध्यम से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। करते करते उसकी आयु 88 वर्ष की हो गई। 88 वर्ष की आयु जब हो गई तो उस समय जो उसका आखिरी पुत्र था, छोटा बालक था, उसके प्रति बहुत आसक्त था। उस छोटे बालक को उसने पहले जो भक्ति की थी, उस भक्ति के प्रभाव से, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है, यही इस कथा का विशेष औचित्य, जिसने थोड़ी भी भक्ति की है उसको भगवान की कितनी बड़ी सुरक्षा प्राप्त होती है। उस कृपा से उसने उस बालक का नाम रखा नारायण। नारायण शब्द का अर्थ क्या है? नार आयन, र शब्द है जितने भी संसार में दोष हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, सब कुछ नार, जो इस सब के परे हैं, जो शुद्ध हैं, जिनसे समस्त सृष्टि का उद्गम होता है, और आयन यानी जो सबके आश्रय हैं, नारायण भगवान विष्णु, उन्होंने अपने उस पुत्र का नाम नारायण रखा और उस पुत्र के मोह में डूब गया। नारायण 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 बेटा इधर आओ, नारायण बेटा ये खाओ, नारायण बेटा ये हंस के दिखाओ, नारायण बेटा मेरी पीठ के ऊपर बैठो, उसके खेल में मस्त हो गया। ऐसा करते करते उसके उसका अंतिम समय आ गया, मृत्यु का समय। जब मृत्यु का समय आया तो उसके सामने मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार के पाप हुए थे। तो उसके सामने तीन भयंकर अकराल विकराल दिखने वाले यमदूत प्रकट हो गए। बिस्तर पे पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, देख रहा था, तीन भयानक आकृति के जीव उसके सामने आ गए हैं। वो देखकर घबरा गया। अभी ऐसा बताते हैं कि जब व्यक्ति घबरा जाता है, जैसे कभी कभी कोई कुछ हो जाता, कहते हैं माता से प्रेम होते, क्या बोलते हैं, आई गो, है बोलते हैं ना, कुछ हो गया, पैर को चोट लगे तो आई गो, या किसी को भगवान राम से प्रेम होते बोलेगा राम, या बोलेगा कृष्ण, जिसके प्रति प्रेम होता है वैसा शब्द बाहर निकलता है। तो इस कारण अजामिल का प्रेम था उस पुत्र के प्रति। तो जब यमदूत आ गए तो उसने क्या उच्चारण किया, नारायण, बोलिए
नारायण
नारायण
नारायण।
जब ऐसा उच्चार किया कातर स्वर में, वो इतना घबरा गया था कि उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उसमें कातर स्वर में उसमें नारायण कुछ इस प्रकार से किया होगा। और इतना कातर स्वर था कि जैसे उसने नारायण कहा, क्या हो गया, उसकी आंखों के सामने 4 अत्यंत सुंदर तेजस्वी, जिन्होंने मकराकृत कुंडल धारण किए हुए थे, पीतांबर वस्त्र पहना हुआ था, चतुर्भुज वाले थे, श्याम वर्ण थे, सुंदर मुकुट थे, गले में सुंदर पुष्प माला थी, चारों एक जैसे दिखने वाले, उसको समझ में नहीं आ रहा था कौन है, बहुत सुंदर है, वहां आ गए। और यमदूत क्या कर रहे थे, अजामिल के हृदय से उसकी आत्मा को खींच रहे थे। और विष्णु दूतों ने कहा क्या, स्टॉप, रुक जाइए। यमदूतों को पहली बार जीवन में किसी ने कहा था रुक जाओ, तो यमदूतों को रोकना बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं रोक सकता है। आप कितना भी प्लानिंग कर लो, कितना भी कुछ कर लो, यमदूत आ गए तो कोई भी शक्ति कार्य नहीं करती है। लेकिन पहली बार किसी ने उनको रोक दिया। जब रोक दिया तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो विष्णु दूतों ने, क्योंकि ऐसा बताते हैं आचार्य, उसने नारायण शब्द लिया, ना रा य न, इस कारण चार अक्षर वाले भगवान ने बोला चार दूत जाओ, उसने मेरा नारायण नाम लिया है तो चार लोग जाओ उसको बचाने के लिए, तीन के ऊपर चार। और विष्णु दूतों ने अजामिल को उस समय मृत्यु से बचा लिया। और उस समय यमदूतों के मन में बहुत सारे प्रश्न उड़ गए और उनके बीच में संवाद हुआ, विष्णु दूतों और यमदूतों में संवाद हुआ कि आप हमको इस कर्म से क्यों रोक रहे हैं। तो विष्णु दूतों ने बताया, उन्होंने बताया कि आप शायद धर्म का अर्थ जानते हैं, आप शायद ये भी जानते हैं कि किसको दंड देना चाहिए किसे नहीं दंड देना चाहिए, लेकिन आप एक चीज नहीं जानते हैं, जो व्यक्ति सुकृत एव मनसो कृष्ण पदारविंदम, जिस व्यक्ति ने जीवन में एक बार भी सही तरीके से भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगा दिया है, और यदि ऐसा व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चार कर रहा है, नारायण नारायण, भले ही वो किसी भी प्रकार से क्यों न कर रहा हो, उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए हैं। क्योंकि भगवान का नाम कैसा है, भगवान का नाम समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। अपराध ऐसा बताते हैं कि सकृत एव प्रपन्नोऽस्मि सुकृत उच्चैतम हरि इति अक्षर द्वयम् बद्ध परिक्रस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति, जिसने हरि या विष्णु या कृष्ण इसका उच्चारण एक बार भी अच्छे से कर लिया है, स्थिर चित्त से कर लिया है, तुरंत ही उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो चूंकि अजामिल ने मृत्यु के समय भले ही अपने पुत्र को पुकारा था, लेकिन फिर भी उसका भाग्य क्या था, उसने पुत्र का नाम नारायण रखा था, वो इस कारण उसको मृत्यु के समय कातर स्वर में उस नाम को पुकारने का फल प्राप्त हुआ। तो भगवान के नाम की यह महिमा है कि भगवान का नाम कोई कैसे भी ले, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हे एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदु। ऐसा बताया गया है कि यदि कोई शुद्ध नाम तो भूल जाओ। सांकेत्यम, जैसे अजामिल ने क्या किया, अजामिल ने भगवान को नहीं पुकारा, अपने पुत्र को पुकारा, पुत्र का नाम नारायण था, इसे कहते सांकेत्यम। परिहास्यम, परिहास्यम मतलब उपहास में, जैसे कभी कभी जाते हैं ना, हे शेंडी वाले साले हरे कृष्णा बोलते हैं ना लोग ऐसे, तो वे परिहास्यम मजाक में लोग उड़ाते हैं। स्तोभम लोग गाते हैं, श्याम रंग रंगारे, अभी किसी को मालूम नहीं है कि वो श्याम कौन सा रंग है, लेकिन श्याम का नाम तो ले रहे हैं, तो गाना सुनते हैं, गाना गाते हैं, भगवान का नाम उसमें आ जाता है, तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं, स्तोभम। और चौथा है हेलनम, हेलनम मतलब कोई ऐसे ही नाम ले लेता है, निंदापूर्वक ले लेता है, और तिरस्कार पूर्वक ले लेता है, या गाली भी दे देता है, उसे कहते हैं हेलनम। तो यदि कोई इस प्रकार से करता है तो भी क्या होता है, भगवान का वह नाम व्यक्ति के पापों को नष्ट कर देता है। भगवान के नाम में यह शक्ति है, लेकिन वो एस्ट्रिक्स याद दिलाना आप मुझे, हाँ वो नहीं भूलना, नहीं तो एस्ट्रिक्स। तो भगवान के नाम की यह शक्ति है, और क्या हुआ, विष्णु दूतों ने यमदूतों को यह सिद्धांत बताया और उसके बाद कहा कि आप अजामिल को ले नहीं जा सकते हैं। और अजामिल ये सब देख रहा था, सुन रहा था, उसने सारा वर्णन सुना। यमदूत वहां से चले गए, विष्णु दूत भी चले गए। उसके बाद क्या हुआ, अजामिल को भगवान की कृपा से प्रेरणा प्राप्त हुई। आचार्य बताते हैं ये अजामिल की पहले की हुई भक्ति का भाग्य था, क्योंकि उसने अपने युवावस्था में अच्छे से भक्ति की थी, इस कारण परम भगवान जो सबके हृदय में है उन्होंने यह योजना बनाई कि अजामिल ने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा और फिर उस नाम को ये न कि न प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत, उस सिद्धांत के आधार पर जब उसने लिया तो अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। और जब अजामिल ने देखा कि वो चार वो कहां चले गए, वो सुंदर दूत विष्णु दूत तो उनके उसके सामने से गायब हो गए थे, फिर वो बड़ा पश्चाताप करने लगा। उसको अपना अपनी युवावस्था याद आ गई, फिर याद आ गया अरे ये विष्णु दूत थे, मैं भगवान विष्णु का भक्त था। एक एक करके उसको सारा स्मरण आने लग गया और उसका हृदय पश्चाताप और ग्लानि से भर गया। फिर उसने स्मरण किया कि उसने किस प्रकार से घोर पाप किए हैं और उन पापों का स्मरण करते करते उसने पश्चाताप में बहुत आंसू बहाए और उसके बाद वो हरिद्वार चला गया। हरिद्वार जाने के पश्चात 12 वर्ष उसने एकनिष्ठ होके भगवान की भक्ति की। तो क्या हुआ, 12 वर्ष के पश्चात वैकुंठ से विष्णु दूत, वही विष्णु दूत, वो चार विष्णु दूत जिसने जिन्होंने उसे बचाया था वो आए और उस विमान में अजामिल को भी एक चतुर्भुज विष्णु का विष्णु दूत का स्वरूप प्राप्त हुआ, विष्णु पार्षद का स्वरूप प्राप्त हुआ और उस विमान में बैठ के भगवत धाम चला गया। म्रियमाणो हरेर नाम कृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि गद्धाम किम उत श्रद्धया गुणन। शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि मरते हुए अजामिल ने पुत्र की भावना से भगवान का नाम ले लिया तो उसे इतना महान फल प्राप्त हो गया। तो जो यदि श्रद्धापूर्वक लेता है, किम उत उसका क्या कहना, जो श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, तो इसमें यह अजामिल का उपाख्यान बताया शुकदेव गोस्वामी ने और उन्होंने परीक्षित महाराज को यह आश्वासन दिया कि जो भगवान की भक्ति करता है उसे किसी प्रकार के भय की आकांक्षा नहीं है। यदि उसने थोड़े समय भी ठीक से भक्ति की है और उसके बाद यदि अपने पग से च्युत हो जाता है तो भी भगवान की कृपा शक्ति उसे एक न एक दिन बचाकर भगवान उसे अपने पास ले आएंगे। तो यह बताया, क्यों बताया, इस उपाख्यान में क्या बात बताई गई है, विष्णु भक्त होने के बावजूद भी पापों में गिर सकता है, वो पाप कर्म में विलिप्त हो सकता है, लेकिन विष्णु भक्त के लिए वो सामान्य जीव के लिए नियम अलग अलग हैं। सामान्य जीवों को भगवान की कृपा शक्ति प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जो सच्चा विष्णु भक्त है यदि उसके बाद किसी कारणवश भक्ति मार्ग से उसका पतन हो जाता है तो भी भगवान की जो कृपा है उसके ऊपर बनी रहती है और किसी न किसी प्रकार से भगवान उसको पुनः भक्ति में ले आते हैं। तो इसके लिए यह उपाख्यान बताया गया है। और इसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ऐसी है कि इसके लिए जो एकमात्र कंडीशन है वो है हृदय की सिंसियरिटी। जैसे हमें बार बार बताया जाता है, क्या बताया जाता है, तीन चीजें बताई जाती हैं, सिंसियरिटी, सीरियसनेस एंड फ्री फ्रॉम अल्टीरियर मोटिव्स। ये तीन चीजें भक्ति के लिए आवश्यक हैं। थोड़े समय में यदि आप भक्ति इस प्रकार से करेंगे तो आपका भगवत धाम जाने का टिकट बुक हो चुका है और एक नेक दिन आप भगवत धाम अवश्य पहुंचेंगे। भले ही बीच में आपकी भक्ति भंग हो जाए तो भी भगवान करे किसी की भंग ना हो, इसके लिए सिद्धांत बताया गया। लेकिन हो भी गया तो कोई डरने की बात नहीं है। तीन चीजें आवश्यक है, एक है गंभीरता, भक्ति में गंभीरता होनी चाहिए, और दूसरी है सीरियसनेस, गहनता होनी चाहिए। गहनता का अर्थ ऐसा है कि भक्ति कोई मजाक नहीं है, भक्ति एक गंभीर विषय है। तो एक तो भक्ति करने के लिए जो दृढ़ इच्छा आवश्यक है वो भी आवश्यक है, साथ में गहन रूप से भक्ति को समझना, भक्ति के विषय क्या हैं, भक्ति के अलग अलग प्रगति के मार्ग क्या हैं, ये सारे बातों का चिंतन करते रहना, इसके लिए सीरियसनेस, गहनता बहुत आवश्यक है। वो तीसरा, सभी प्रकार के भौतिक इच्छाओं से सुख प्राप्त करने की भावना से दूर होकर शुद्ध भावना से भक्ति का अभ्यास करना। तो इन तीन चीजों से हम करेंगे, थोड़े समय के लिए भी करेंगे, तो हमें निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और जिस प्रकार से अजामिल को भगवान के नाम की परम कृपा प्राप्त हुई, वैसे हम सभी को भी प्राप्त हो सकती है। तो यहां पर बताया गया है श्रीमद् भागवतम में कि जो भी इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में को सुनता है उसमें सारे पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति है, अतः जो भी इसे श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक सुनता है या सुनाता है वह नरक का भागी नहीं होता, चाहे उसे भौतिक शरीर मिला हो, चाहे वह कितना ही पापी क्यों ना रहा हो। दरअसल यमराज के आदेशों का पालन करने वाले यमदूत उसे आंख उठाकर देखने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। अपना शरीर त्याग करने के बाद वह भगवत धाम लौट जाता है, जहां उसका सादर स्वागत किया जाता है और पूजा की जाती है। यह इस कथा को, इस उपाख्यान को सुनने का बहुत ही सुंदर परिणाम है। श्रील शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान का यह पवित्र नाम और इसका कीर्तन ही हम सभी जीवों के परम गति का उपाय है। तो छठवें स्कंद में जो अजामिल की कथा बताई गई है उससे वैष्णवों को यह विश्वास प्राप्त होता है कि भगवान की शरणागति लेने पर जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता, भगवान की कृपा बनी रहती है। छठवें स्कंद में और भी विषयों का वर्णन किया गया है। इसके बाद जो वर्णन आता है वो है दक्ष प्रजापति का वर्णन। दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दिया। आपने देखा कितना सुंदर भजन है, श्री नारद मुनि भगवान के परम भक्त हैं। जो नारायण नारायण शब्द है, हमने सुना हुआ है कि नारद मुनि संपूर्ण ब्रह्मांड में नारायण नारायण कहते हुए घूमते रहते हैं और सभी जीवों को उद्धार करने के लिए वो भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसे महान भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त को दक्ष प्रजापति ने श्राप क्यों दे दिया? और हम ये भी सुनते हैं कि दक्ष स्वयं एक भक्त हैं, वो भी भक्त हैं, तो ऐसा कैसे संभव है कि एक भक्त दूसरे भक्त को श्राप दे सकता है? ये समझना बहुत आवश्यक है। जैसे हमने अजामिल की कथा सुनी तो हमें लगा, हमने सोचा होगा हम भक्त हैं, भक्ति मार्ग में हैं, और तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ भी करो कैसा भी करो, एक बार भगवान की भक्ति कर ली तो हम संकट से बच जाएंगे। निस्संदेह भगवान का नाम हमें समस्त संकटों से बचा सकता है, लेकिन भक्त के जीवन में केवल पाप कर्म का धोखा नहीं है, पाप कर्म तो भक्त करता ही नहीं है। जो भगवान का सच्चा भक्त है वो पाप से विमुख होता है, उसकी वृत्ति पाप करने में होती ही नहीं है, क्योंकि उसका हृदय भगवान को संतुष्ट करने के लिए व्याकुल होता है। तो ये बात तो सही है कि पापों का निवारण भगवान की भक्ति से हो जाता है, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त कभी भी पापों के निवारण के लिए भक्ति नहीं करते हैं। भगवान के नाम में 10 अपराध बताए गए हैं, उसमें से जो 7वां अपराध है वो है नामनो बलात् ही यस्य पाप बुद्धि। तो जो भगवान के नाम को ये समझ कर लेता है कि चलो अच्छा है, मैं अजामिल की कथा सुनी हुई है, भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा मार्ग मिल गया है, तो हम पाप करेंगे और उसके बाद भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मस्त हरि नाम कीर्तन करेंगे, तो भक्त का तो लक्षण नहीं है। तो इस कारण बताया गया है 7वां अपराध, जो भगवान का नाम इस भावना से लेता है कि मैं नाम की शक्ति इतनी महान है तो मैं पाप करूंगा तो भी नाम तो उस पाप को क्षीण कर डालेगा, तो जो नाम के बल पर पाप करता है ये समझकर कि नाम की शक्ति से मैं अपने पापों को दूर कर दूंगा, तो उसे निश्चित रूप से पापों से मुक्ति का तो फल प्राप्त हो जाता है। भगवान का नाम कैसे भी लिया गया तो पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप करने वाला यदि इस भावना से भी लेता है कि मैं भगवान का नाम लेकर पापों को धो दूंगा तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पाप से भी भयंकर एक चीज है, उसे कहते अपराध। अपराध ऐसा बताते हैं श्रील गौर गोविंद गोस्वामी कि जो भगवान की परम संगिनी है राधिका, राधा, वो राधा रानी कृपा प्राप्त होने से ही भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। एक तत्व को समझना भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है कि हम भक्ति किसी मुक्ति व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। भगवान के भक्त मुक्ति के अभिलाषी नहीं होते हैं, मुक्ति नहीं चाहिए, दूर तिष्ठ, भगवान कहते दूर ही रहो तुम, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। कैवल्य नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते विधि महेंद्राश्च कीटायते। एक भक्त के लिए कैवल्य यानी मुक्ति मतलब नरक के समान है। उस कैवल्य मुक्ति का क्या फायदा जहां भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं होता, भगवान के भक्तों का संग नहीं होता, भगवान की कथा को सुनने नहीं मिलता, भगवान की सेवा नहीं मिलती, तो ऐसे मुक्ति को लेकर हम क्या करेंगे। बहुत सारे लोग कहते ब्रह्म में लीन हो जाना, उसे मुक्ति कहते हैं। फायदा क्या है उस मुक्ति का, ब्रह्म में लीन होकर आप एक अखंड प्रकाश का अंग बन जाते हो। भक्त लोग ऐसी मुक्ति की कामना नहीं करते, भक्त लोग भगवान की सेवा की कामना करते हैं, और भगवान की सेवा के लिए वो अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट को लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो उसका जो वर्णन है उन बातों का भी वर्णन इस अध्याय में किया गया है, इस स्कंध में किया गया है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो मुक्ति नहीं चाहते, उनके लिए त्रिदशपुर मतलब जो दुनिया भर के स्वर्ग हैं जहां पे अपार आनंद की सामग्रियां हैं वो भी भक्तों को नहीं चाहिए। विधि महेंद्राश्च कीटायते, उनके लिए विधि यानी ब्रह्मा जी का पद भी दे देगा कोई उनको, या महेंद्र यानी स्वर्ग के राजा इंद्र, उनका पद भी कोई दे देगा कि आप बन जाओ इंद्र बन जाओ ब्रह्मा जी बन जाओ। कीटायते वो पद भी उसके लिए तुच्छ, एक कीड़े का जो स्थान है उसके समान है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जीवन का सच्चा श्रेय और सच्चा धन वो है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन देहो कृष्ण प्रेम धन, ऐसा बताया गया है। कि जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है, जिसका हृदय भगवान के सेवा के लिए लालायित नहीं है, जो भगवान का नाम लेने के लिए उत्कंठित नहीं होता, जिसको भक्तों को देखकर आनंद नहीं होता, भक्तों की सेवा की भावना जिसके हृदय में नहीं है, न श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा है। और कभी कभी कुछ लोग सुनने के लिए आ जाते हैं श्रीमद् भागवतम सप्ताह, भागवत सप्ताह, लेकिन क्या भावना होती है? सप्ताह का फल, फल मिलना चाहिए। तो जिसके अंदर ये सकाम भावना है कि वो फल प्राप्ति की इच्छा से भक्ति का अभ्यास करता है, वो कैसा है? वो उस व्यक्ति के समान है जो पैसे के लिए काम करता है। जैसे आपके घर में कोई नौकर होगा तो आपकी सेवा करता है, आप उसको पैसा देते हो तो सेवा करता है, पैसा नहीं दोगे तो बंद कर देगा सेवा। तो वैसे ही हमने धंधा चालू किया हुआ है, भगवान के सप्ताह में जाएंगे, भागवत सप्ताह में जाएंगे, भक्ति में जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, क्यों? कुछ मिलना चाहिए, कुछ भगवान कुछ, तब तक कोई मिलेगा नहीं तो फायदा क्या है? हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, धन बढ़ना चाहिए, ऐश्वर्य बढ़ना चाहिए, ऐसी भावनाएं सकाम भक्तों की होती है। वो नहीं हुआ तो भक्ति का फायदा क्या है? अरे भक्ति का फायदा क्या है? कभी कभी कुछ लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं, तो कृष्ण भक्ति का एक विशेष लक्षण है और आप सभी को बताना बहुत आवश्यक है। यदि आप भक्ति में इसके लिए आ रहे हो कि आपका जीवन परम सुखमय हो जाएगा, तो उसकी 0% गारंटी है, क्योंकि भक्ति में आने के बाद तो सही मार्ग शुरू होता है। शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस तत्र कवयो वदन्ति। भक्ति का मार्ग ये नहीं कि मजा मस्ती, चलो वो अच्छा है, भगवान की कृपा है कि हमको भक्तों का संग मिल रहा है, श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको आनंद कंद या कीर्तन, क्या बताया गया आनंद कंद में? दो चीजें हैं, भगवान का नाम, प्रभुपाद कहते भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, नृत्य करो, प्रसाद खाओ, मस्त रहो, वो एंट्री है, एंट्री के लिए ही वो अच्छा है। जिसने कुछ साल भक्ति में निकाले हैं उसको पूरा अनुभव है कि भक्ति मतलब कोई मजा मस्ती का कार्य नहीं है। यह यदि आप सच्चे भक्त हैं और यदि आपके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, तो आपको यह प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं सच्ची भक्ति कर रहा हूं या नहीं। यह उसकी वो है, उसका मूल्यांकन है। जो सच्चा भक्त है और उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भक्ति कर रहा है वो प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है, मतलब समझ लेना कि भगवान की विशेष कृपा हो रही है। इस कारण कुंती महारानी क्या कहती हैं? विपदा संतु तह शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, मेरे जीवन में बारंबार विपदाएं आए, जब विपदा आएगी तो क्या होगा? मुझे मालूम पड़ेगा मैं कितना असहाय हूं, कितना मूर्ख हूं, कितना ज्ञानी हूं, कितना पतित हूं। हे भगवान, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मुझे शरण दे सकते हैं। तो क्या होगा? भगवान की भांति जैसे अजामिल जब संकट आ गया तो नारायण कातर स्वर में पुकारा, तो वैसे ही जब संकट आते रहेंगे तभी तुम भगवान का नाम, भगवान का आश्रय पूरे हृदय से लेंगे। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? भगवान का निश्चित रूप से अंत में दर्शन होगा। तो भक्त लोग भक्ति का मार्ग कभी कभी उसे कांटों का मार्ग बताया गया है। जैसे गुलाब होता है, गुलाब के फूल, यदि गुलाब के फूलों के ऊपर चलने के लिए बताया जाए तो गुलाब के फूल के साथ उसके कांटे भी होते हैं, आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन भक्ति के मार्ग में यदि इस प्रकार से चलते रहोगे तो किसके लिए है? हमारे शुद्धिकरण के लिए है, हमारे चित्त के शुद्धिकरण के लिए है। और निश्चित रूप से भगवान के भगवान चित्त शुद्धिकरण होने के पश्चात भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्त लोग भगवान की सेवा चाहते हैं, वो मुक्ति नहीं चाहते हैं। लेकिन अपराध, राधा रानी जो भगवान का प्रेम देती है, मुक्ति और प्रेम में अंतर समझ लेना बहुत जरूरी है। प्रेम यानी भगवान की सेवा, भगवान की सेवा मिलती है। जैसे भगवान का वृंदावन धाम है, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्पवृक्ष हैं, बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारी लक्ष्मियां हैं जो उनकी वहां सेवा करती हैं। चिंतामणि धाम है, उस धाम में भगवान की साक्षात सेवा का अवसर प्राप्त होता है, उसका रस मिलता है, तो ये बात नहीं मिलती है। ये प्रवेश, धाम में प्रवेश किसको मिलता है? केवल उनको मिलता है जिनके हृदय में भगवान का प्रेम होता है, जो केवल मुक्ति की इच्छा से भक्ति करते हैं, उनको भगवान का धाम, जो बाहरी ब्रह्म ज्योति है, वो प्राप्त हो जाती है, लेकिन भगवान का धाम के अंदर प्रवेश प्राप्त नहीं होता है। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। भगवान के धाम में प्रवेश से, पापों से मुक्ति से, आप मुक्ति तो मिल जाएगी, पापों से मुक्त होंगे, लेकिन भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। और वो प्रवेश से कौन सी चीज रुकती है? अपराध। राधा रानी की कृपा से व्यक्ति भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है, और राधा रानी की कृपा अपराधों से, अपराध वो ढक दी जाती है, अप यानी ढकना, राधा की कृपा अपराध से ढक दी जाती है। फिर ऐसा भक्त भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इस कारण बताया गया है, भक्त को भगवान के नाम जप में अपराधों से बचना चाहिए, जो 10 अपराध हैं उससे बचना चाहिए। और सबसे बड़ा अपराध है ध्यानपूर्वक जप न करना। ध्यानपूर्वक जप न करने से ही सारे अपराध प्रकट होते हैं। इस कारण जितना संभव हमें ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। इस सिद्धांत को समझ लेने के पश्चात हम आगे जाते हैं। दक्ष भगवान के भक्त हैं। दक्ष का इतिहास ऐसा है कि आप सभी को मालूम था कि उन्होंने अपनी पुत्री सती का विवाह न चाहते हुए शिवजी के साथ कर दिया था। शिवजी की पत्नी सती थी, और आपने कथा सुनी भी होगी पहले, है ना, कि किस प्रकार से दक्ष ने शिवजी के प्रति अपमान किया, उनका यज्ञ विध्वंस हो गया, और उस कारण उनको क्या प्राप्त हुआ? उनका सिर काट दिया गया और उनको एक बकरे का सिर प्राप्त हुआ। जब बकरे का सिर प्राप्त हुआ तो वो समझ गए मैंने गलती की है, लेकिन बाहर आदमी मुंडी हिलाता है, लेकिन यहां पर जैसे चोर को पकड़ लिया जाए, जेल में रख दिया जाए, तो क्या करता है? चुप हो जाता है। सामने पुलिसमैन खड़ा है तो ज्यादा आवाज नहीं करता है ना, खड़ा रहता है, बोलता अभी क्या करोगे, आवाज किया तो और पुलिस 2 डंडे और मारेगा। तो अभी बोला कि अभी सब नष्ट हो गया, बकरे का सिर लगे, बोले नहीं अभी जाने दो, ठीक है, बहुत हो गया, गलती हो गई, सब कुछ हो गया, समझ गए वो, लेकिन गलती समझ गए, लेकिन बकरे का सिर लेके घूमना पड़ रहा है सब तरफ, बड़ा अपमानजनक है। जिसका सुंदर सुंदर शरीर हो, सुंदर मुख हो, तेजस्वी मुख हो, उसको आप बकरे का सिर लगा दो, और रोज आईने में दिख रहा है बकरे का सिर, बड़ा दुख होता है। तो दक्ष प्रजापति ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, भला मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, उन्होंने त्याग कर दिया। ये घटना हुई थी स्वयंभू मनु के समय पे। 14 मनु होते हैं, पहले मनु है स्वयंभू मनु, उनके इसमें हुई थी। अभी त्याग तो कर दिया, लेकिन सृष्टि तो करना है। तो दक्ष प्रजापति फिर से प्रकट हुए, वही 6वें मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में तो प्रकट हुए। और कथा ऐसी आती है कि प्रचेत, जो प्राचीन ही बरही के पुत्र थे प्रचेत गण, वो तपस्या के लिए पानी के अंदर चले गए थे। जब वो पानी से बाहर आए तपस्या करने के पश्चात, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को पेड़ों से भरा हुआ पाया। ऐसा बताते हैं कि शासन व्यवस्था जो होती है, उनको इसका विचार करना चाहिए कि खेती करने वाले जो जमीन है उस पर खेती हो, नहीं तो फालतू के जो पेड़ पौधे हैं उसके ऊपर उगाते हैं। तो प्रचेताओं को राज्य करना था, लेकिन चूंकि वो तपस्या कर रहे थे, विश्व की व्यवस्था के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा सब तरफ बहुत सारे पेड़ उग गए हैं, तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने उन पेड़ों को भस्म करने के लिए मंत्र बोलना चालू किया। तो उस समय जो पेड़ों के राजा थे सोम, जो चंद्रदेव हैं, वो वहाँ आए। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, इसमें पेड़ों का क्या दोष है, हम आपको एक सुंदर कन्या देते हैं जिसका नाम है मारीशा, वो इन सारे पेड़ों द्वारा पाली गई है, जो परमलोचा अप्सरा की पुत्री है, तो कृपया आप उसे स्वीकार कीजिए और फिर से सृष्टि को आरंभ कीजिए। तो प्रचेताओं का मन शांत हो गया, उन्होंने मारीशा के साथ विवाह किया और उसके बाद उससे कौन प्रकट हुए? मारीशा से प्रचेत गणों और मारीशा से उत्पन्न हुए दक्ष प्रजापति, फिर से उनका जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ तो उन्होंने उसके बाद पांचजनी या असिकनी उनके साथ विवाह किया और उसके पहले उन्होंने सृष्टि करना आरंभ किया था लेकिन सृष्टि कर नहीं पा रहे थे तो उन्होंने हंस गुह्य प्रार्थनाएं बोली। हंस गुह्य प्रार्थनाएं बोलने के बाद परम भगवान को प्रसन्न किया, भगवान उनके सामने प्रकट हुए और प्रकट होने के पश्चात भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर कहा कि हे दक्ष, मैं ये देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में संतति संतानोत्पादन की बहुत ज्यादा इच्छा है, इस कारण तुम्हारी इस इच्छा को देखते हुए तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम हजारों हजारों पुत्रों को उत्पन्न कर सकोगे, असीमित शक्ति देता हूं मैं संतानोत्पादन की। रूपात तात्पर्य में लिखते हैं, यदि किसी भक्त की ऐसी इच्छा है यौन जीवन या संतान उत्पादन की तो भगवान उसको पूरा करेंगे, लेकिन ये शुद्ध भक्ति की इच्छा नहीं है। तो भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के पश्चात क्या हुआ, दक्ष प्रजापति ने सृष्टि की, असिकनी से विवाह करके पहले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया जिनको कहा जाता है हरयश्व गण। हरयश्व जो 10,000 पुत्र थे, दक्ष प्रजापति ने उनको तपस्या के लिए भेजा। जब वो तपस्या के लिए गए तो वहां पर उनको नारद मुनि मिल गए और नारद मुनि के संग से कौन शुद्ध नहीं होगा। नारद मुनि ने उनको ऐसी उपमा दी, उनको इस तरीके से संसार का चक्र समझाया, बहुत सुंदर उपमा है जिसको समझने के लिए कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, तो बहुत उपमा दी जिससे उनको समझ में आ गया कि संसार जो है ये एक ऐसा भयानक स्थान है जहां पर जीव फंस जाता है, इस कारण इससे बाहर निकलने का मार्ग यही है कि पूर्ण रूप से हम संसार का त्याग करके भगवान की भक्ति में लग जाएं। तो जो हरयश्वगण थे वो भगवान के भक्त बन गए, उन्होंने संन्यास मार्ग का स्वीकार करके दक्ष प्रजापति का त्याग कर दिया। तो जब दक्ष प्रजापति को यह मालूम पड़ा तो बहुत विचलित हो गए, लेकिन उन्होंने सहन कर लिया, बोला कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने और पुत्र उत्पन्न किए, 1,000 पुत्र उत्पन्न किए जिसको सवलाश्व गण बोलते हैं। सवलाश्व गणों की उत्पत्ति की, उनको तपस्या के लिए भेजा तो तपस्या में फिर से क्या हुआ, नारद मुनि मिल गए और नारद मुनि ने उनको बोला कि तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राताओं के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, तुम्हारे बड़े भाई कोई मूर्ख थे क्या? तो उन्होंने, वो बहुत बुद्धिमान थे, इस कारण वो 10,000 चले गए भगवान की सेवा में। वो सुन के 1,000 सवलाश्व भी विरक्त होकर भगवान की भक्ति में लग गए और जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा तो बहुत क्रोधित हुए, लेकिन बोले जब नारद मुनि सामने आएंगे तब दिखाऊंगा। और जब नारद मुनि सामने आ गए उनके बाद एक बार कई समय के पश्चात तो वो क्रोध से उनके नथुने फड़कने लगे, ओंठ फड़कने लगे और उन्होंने जोर जोर से बोला, तुम भक्त होने का ढोंग करते हो, तुमको धर्म नहीं मालूम है, तुम्हें यह नहीं मालूम है कि जो जीवात्मा होती है संसार में फंसी होती है उसको बहुत सारे ऋण होते हैं, देव ऋषि भूत बहुत सारे उसको प्रवृत्ति मार्ग का पालन करना चाहिए, जीवात्माओं की इच्छा को आप दबा नहीं सकते हो, उसको एकदम संन्यास के मार्ग पे नहीं भेज सकते हो, उसको धीरे धीरे शुद्धि के मार्ग का अनुसरण करते हुए ही भगवान के पद को प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन तुम धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हो, इस कारण मैं तुमको शाप देता हूं कि तुम कभी भी एक स्थान पर टिक के नहीं रहोगे, तुम घूमते रहोगे, तुम्हें कहीं पर तुम्हारा स्थान नहीं होगा, आवास नहीं होगा। ऐसे कभी कठोर वचनों में उन्होंने उनको शाप दे दिया। नारद मुनि ने जब पहली बार सुना श्राप तो खड़े रहे मुस्कुराते हुए, देखते रहे, वो जो बोल रहे थे बोलने दिया, नारद मुनि चाहते तो उलट कर उनको शाप दे सकते थे, नारद मुनि चाहते तो छोड़ के भी जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। वो क्यों नहीं गए? वो जानते थे दक्ष वैष्णव हैं, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और ऐसा ही हुआ, नारद मुनि ने उस शाप को अपने लिए वरदान बना लिया। बोला चलो कहीं मैं अभी फंसूंगा नहीं, घूमता रहूंगा अखिल ब्रह्मांड में और भगवान के नाम का राधिका रमण नामे प्रचार करता रहूंगा। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के श्राप को स्वीकार कर लिया। अभी समय की कमी होने के कारण जस थोड़ा सा बताता हूँ। अजामिल को पाप से मुक्ति मिली भगवान की भक्ति करने से, भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। दक्ष प्रजापति ने साक्षात भगवान का दर्शन किया, विष्णु दूतों का नहीं, साक्षात भगवान का दर्शन किया। उसके पश्चात भी उनकी बुद्धि जो थी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई थी। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यही गृहस्थ जीवन, संतानोत्पादन, इसका जो कार्य है, इसका यह प्रभाव होता है कि व्यक्ति की चेतना कलुषित होती है और फिर वो अपने जनस्य मोहोयम अहम ममेति उसमें वो अटक जाता है और इस कारण वो सत्य को नहीं जान पाता है। भले ही उसने साक्षात भगवान का दर्शन क्यों न किया हो, तो ये बताया गया है। इस कारण एक भक्त को ये क्यों बताया गया? सावधान रहने के लिए कि हम भक्ति मार्ग में हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम असावधान हो जाएं। हमें वैष्णव आचरण को पालन करना बहुत आवश्यक है और यदि कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, क्या समझना चाहिए? भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा ही बलि ऐसी है। मैं क्यों दोष देख रहा हूं? जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसमें निश्चित रूप से मैं भगवान का भक्त हूं, मेरे कल्याण के लिए भगवान ने योजना बनाई हुई है। जो इस प्रकार से अपने जीवन में आने वाले हर घटना को देखता है वह भक्त है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। जो कुछ भी हो रहा है वो क्या समझता है? भगवान की अनुकंपा है। तो जो इस भावना से भक्ति करता है वो शुद्ध भक्त है। तो दक्ष प्रजापति का यह वर्णन इस कारण दिया गया है कि दक्ष प्रजापति की भावना में और नारद मुनि की भावना में अंतर बताया गया है। नारद मुनि ने विनीत भाव से दक्ष प्रजापति के श्राप को स्वीकार कर लिया और चले गए। ऐसे एक और घटना है जो आगे की है, जो है वृत्रासुर के वध की कथा। ऐसा बताते हैं इंद्र भी, इंद्र का नाम क्या है? सुरेश। वो देवताओं के राजा हैं, इस कारण वो सुरेश है, मतलब भगवान के अग्रणी भक्तों में से एक हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त के से उनकी बराबरी नहीं है। तो जो वृत्रासुर के वध का वृत्तांत है, बड़ा विशेष वृत्तांत है। इंद्र जो सुरेश हैं और वृत्र जो असुर है, उनके बीच में युद्ध का वर्णन है और उसमें वृत्रासुर भक्त होने के कारण यशस्वी हुए। इंद्र ने उनका वध कर दिया लेकिन फिर भी वृत्रासुर जो है वो अमर हो गए। तो वो घटनाक्रम क्या है? तो बहुत ही विशेष घटनाक्रम है। ऐसा आपने सुना होगा, चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। चित्रकेतु जो थे उनकी बहुत सारी रानियां थी। कृतद्युति नाम की उनकी एक पट रानी थी और भी बहुत सारी रानियां थी। तो एक बार उनको पुत्र नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े व्याकुल थे। एक बार उनके पास नारद मुनि और अंगिरा मुनि आए, तो उनसे उन्होंने अनुनय विनय करके एक पुत्र की याचना की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बहुत इच्छा है तो पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन तुम उसका नाम क्या रखना? हर्ष शोक। हर्ष शोक मतलब वो हर्ष का कारण भी होगा और शोक का कारण भी होगा। तो उसका नाम हर्ष शोक रखा। बाद में ऐसा हुआ कि जो सौतेली रानियां थी उनके हृदय में बहुत ईर्ष्या हो गई, क्योंकि चित्रकेतु कृतद्युति को ज्यादा प्यार करने लगे। कृतद्युति को पुत्र प्राप्त हुआ था तो उन्होंने उसको विष खिला दिया और बालक की मृत्यु हो गई। जब बालक की मृत्यु हो गई तो चित्रकेतु बहुत रोए और उस समय फिर से अंगिरा मुनि नारद मुनि वहां आए और उनके दुख को उन्होंने दूर किया, चित्रकेतु के मरे हुए पुत्र को जीवित किया और उस पुत्र के मुख से आत्मविद्या का ज्ञान दिया कि किस प्रकार से शरीर ये तो छूट जाता है, आत्मा अजर अमर है, ये देहांतरण करती है, अलग अलग जन्मों में अलग अलग माता पिता संबंधी होते हैं, उनसे आसक्त होने से क्या प्रयोजन है। जब चित्रकेतु ने अपने मृत पुत्र के मुख से यह ज्ञान सुना तो उसके बुद्धि में थोड़ा सा प्रकाश आ गया और उसके बाद नारद मुनि ने उनको विशेष मंत्र दिया, संकर्षण भगवान की भक्ति का मंत्र। तो उस मंत्र को स्वीकार करके 7 दिनों के अंदर चित्रकेतु को संकर्षण भगवान का दर्शन हो गया, संकर्षण भगवान की कृपा प्राप्त हुई और उसके बाद भगवान ने उनको यह वरदान दिया कि तुम हमेशा मेरे भक्त बने रहोगे और हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहोगे। लेकिन उसके बाद चित्रकेतु जो थे विद्याधरों के राजा बन गए। विद्याधरों के जब वो राजा बन गए तो बहुत सारी रानियों के साथ एक बार वो विमान में उड़ रहे थे, वो सब तरफ विचरण कर रहे थे। तो एक बार वो उड़ते उड़ते एक स्थान से गुजरे जहां पर शिव जी बहुत सारे संत पुरुषों के साथ बैठे हुए थे। और आप सभी को मालूम है शिव जी जो हैं विरक्त हैं, तो उनकी जो पत्नी थी पार्वती वह उनके गोदी में बैठी हुई थी और गोदी में तो बैठी हुई थी, वो आलिंगन करके बैठे हुए थे उसको, इस प्रकार से गोदी में आलिंगन करके बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, बाकी संत पुरुषों को परम सत्य का उपदेश दे रहे थे, भगवत कथा सुना रहे थे, विरक्ति का उपदेश दे रहे थे, किस प्रकार से मनुष्य को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो चित्रकेतु ने बड़ा विचित्र दृश्य देखा, बोले भगवान शिव जी हैं ये सबको त्याग का विरक्ति का संदेश दे रहे हैं, उनकी पत्नी गोदी में बैठी हुई है आलिंगन करके बैठे हुए हैं। तो उसको देख के उनको आश्चर्य हो गया, कितने आश्चर्य है, उस आश्चर्य में वो हंस पड़े और हंसते हंसते उन्होंने कह दिया कि ये कैसा है, ये तो ठीक नहीं है, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता है। तो जब वो हंस पड़े उन्होंने ऐसे वचन कहे तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अभी चित्रकेतु भी भगवान का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, संकर्षण भगवान का, लेकिन अपराध हो गया, भगवान शिव के प्रति वो हंस पड़े। तो उसे देखकर पार्वती देवी को लगा कि ये कौन है जो मेरे पति को जो इतने महान है शिक्षा देने के लिए आ गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दे दिया, जाओ तुम असुर योनि को प्राप्त कर लो, तुम्हारा असुर योनि में जन्म हो, क्योंकि तुम भक्त होकर भी यह नहीं जानते कि किस प्रकार से भक्तों का सम्मान करना चाहिए। तो अभी ऐसा बताते हैं चित्रकेतु महाराज जो थे उन्होंने जैसे उनको श्राप मिला तो पहली बात तो यह बताया कि वो विद्याधर स्त्रियों के संग में थे, तो कहते कि थोड़ा सा तो अहंकार आ ही जाता है जब इस संसार में भक्त होता है। तो 2 प्रकार के भक्त हैं, एक तो भक्त होके इस संसार में है, भगवान का दर्शन प्राप्त करके इस संसार में है, और भक्त जो इस संसार से परे भगवत धाम जा चुके हैं। तो जब तक हम इस संसार में हैं खतरा बना हुआ है, अपराध का खतरा बना हुआ है, पाप का खतरा तो नहीं होगा, अपराध का खतरा बना हुआ है। तो जो चित्रकेतु थे जैसे ही उन्होंने पार्वती माता के श्राप को सुना तुरंत हाथ जोड़कर वो नीचे उतर आए, उन्होंने विनीत स्वर में पार्वती माता को नमस्कार किया वो कहा कि जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, आपने जो श्राप दिया है इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे ही पूर्वज गत कर्म होंगे जिसके कारण मुझे यह श्राप मिला है, इस कारण मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। और इस प्रकार से नमस्कार करके वो वहां से चले गए। जब शिवजी ने देखा तो मुस्कुराए, क्योंकि वो आत्मतत्व के ज्ञाता हैं, वो जानते हैं। तो उन्होंने पार्वती देवी से कहा, देखो भगवान के भक्त कितने महान होते हैं, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ समदर्शिना। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, नारायण परायण होते हैं, कहीं भी किसी भी स्थिति में घबराते नहीं हैं, स्वर्ग मिले नरक मिले भयानक स्थिति मिले वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से शिवजी ने वैष्णव का गुणगान किया कि किस प्रकार से चित्रकेतु एक महान वैष्णव है। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये वैष्णव का लक्षण है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदाहरि। चित्रकेतु महाराज का जो व्यवहार है, नारद मुनि का जो व्यवहार है श्राप मिलने पर, वो कैसा व्यवहार है, यह व्यवहार है। चित्रकेतु भी चाहते तो पार्वती देवी को पलट कर श्राप दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उसे नम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया। तो यह भक्त का लक्षण है जो भगवान के शरणागत हैं। तो ऐसे भक्तों का वर्णन किया गया है। तो ऐसा बताते हैं कि चित्रकेतु को वृत्रासुर का शरीर प्राप्त हुआ, भयानक शरीर। और ऐसा बताते हैं इसके विपरीत इंद्र, एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे और सभा में बहुत सारे उनके पार्षद थे और उस समय उनके गुरु बृहस्पति वहां आ गए थे, लेकिन उन्होंने उनका सत्कार नहीं किया। तो गुरु अपराध करने के कारण इंद्र की सारी शक्ति जाती रही और इस कारण इंद्र जो थे उनको देवता, उनको असुरों ने हरा दिया। तो बहुत लंबी कथा है किस प्रकार से इंद्र ने फिर से विश्वरूप नामक याज्ञिक को बनाकर इंद्रपद को प्राप्त किया, लेकिन जो विश्वरूप थे वह असुरों के प्रति स्नेह रखते थे, तो यज्ञ करते समय उन्होंने आहुति असुरों को भी दी थी। तो इंद्र को यह देख के क्रोध आ गया था और उन्होंने विश्वरूप की हत्या कर दी थी। तो विश्वरूप के जो पिता थे, त्वष्टा नाम के ऋषि थे, उन्होंने इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र चाहा और यज्ञ किया, लेकिन मंत्र बोलते समय उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी। इंद्र शत्रु को थोड़ा उन्होंने लंबा कर दिया, इंद्र शत्रु, तो वो शत्रु का अशत्रु बन गया। इंद्र शत्रु को इंद्र शत्रु, तो क्या हो गया वो इंद्र अशत्रु, मतलब जो बालक पैदा होगा वो कैसा होगा, इंद्र का शत्रु नहीं होगा। लेकिन मारने के लिए मतलब उसके उसके प्रयोजन से तो होगा। इंद्र कहने का इंद्र को मारने वाला न होते इंद्र से मरने वाला हो गया, ऐसा प्रकट हो गया। तो जब उन्होंने आहुति दी तो वृत्रासुर प्रकट हुए जो चित्रकेतु महाराज थे, और ये वृत्रासुर ने इंद्र के साथ संग्राम किया। इंद्र को उनका वध करने के लिए दधीची मुनि की हड्डियों से बने हुए वज्र का प्रयोग करना पड़ा, तभी वो मार सके। और ऐसा बताते हैं जब युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, और वृत्रासुर को मालूम था कि इंद्र मुझे मार डालने वाले हैं, तो वो उनको चुनौती देते थे, सामने आओ, डरते क्यों हो, मुझे मारो। तो ऐसा बताते इंद्र ने वृत्रासुर को मारा और उनके सिर को काटने के लिए केवल 1 साल लग गया वज्र से, इतना इतना मजबूत उनका वो शरीर था। तो चित्रकेतु महाराज का ऐसा अंत हो गया, लेकिन जब उनका अंत हुआ वो केवल भगवान के स्मरण में लीन थे, भगवान के भक्ति में लीन थे। तो उसमें बताया गया है विशेष रूप से कि ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम लेते समय मृत्यु नहीं होगी, अपघात भी हो सकता है, किसी कारणवश मृत्यु भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम यदि लिया गया तो क्या है, भगवान को नाम लेने से निश्चित रूप से भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। तो ऐसा बताते कि चित्रकेतु महाराज के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो भगवान के विशेष भक्त थे और भगवान उनके ऊपर कृपा देना चाहते थे कि जल्दी से जल्दी तुम वैकुंठ धाम आ जाओ। तो इस कारण पार्वती की माता के मुख से उनको श्राप लगा और इस प्रकार से जल्दी वो इंद्र के साथ युद्ध करके उनके द्वारा वध करके भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। तो ये छठे स्कंद का वृत्तांत है। इस कथा को सुनने का जो फल है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर अपने मन तथा वाणी को वश में रखकर तथा श्री भगवान का स्मरण करके चित्रकेतु का यह इतिहास पढ़ता है, वह बिना कठिनाई के भगवान के धाम को चला आ जाता है। तो यह सुंदर वृत्तांत है। तो संक्षेप में बताने के लिए, इस छठे स्कंध में प्रायश्चित्त का विषय है। प्रायश्चित्त में जो पाप कर्म हो जाते हैं उसके लिए प्रायश्चित्त करना पड़ता है, भगवान की भक्ति और विशेष रूप से भगवान का नाम सबसे बड़ा हृदय को शुद्धिकरण करने का साधन है, जिससे हृदय के अंदर पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। भगवान के नाम को लेने से जैसे अजामिल को भगवत धाम प्राप्त हो गया, सभी को प्राप्त हो सकता है। और यदि हम शुद्ध भाव से भक्ति नहीं करते हैं, जैसे दक्ष प्रजापति हैं या इंद्र हैं, तो भी भगवान का दर्शन होने के बावजूद भी हमारे जीवन में संकट बने रहेंगे। इस कारण सभी वैष्णवों को यह चाहिए कि वो भगवान के नाम की पूर्ण हृदय से शरणागति ग्रहण करें और भगवान के धाम को प्राप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे।